बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 18 जून, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जिस जगह के नाम पर संगीत का किराना घराना बना, आज क्यों है चर्चा में? उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले अचानक कैराना से पलायन का मुद्दा क्यों उछला? क्या वाकई वहां दो समुदायों के बीच तनाव है, या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में वोट हासिल करने की एक रणनीति है? क्या है कैराना का सच? इंडिया बोल में यही है बहस का मुद्दा। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं बीजेपी विधायक संगीत सोम और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीपी राय। राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001। लेकिन थोड़ा सा ठहरे और सुने बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि वो इसी साल सितंबर में कार्यकाल खत्म होने पर पद से हट जाएंगे। रघुराम राजन ने कहा कि 4 सितंबर 2016 को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसके बाद वो अकादमिक क्षेत्र में लौट जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जब भी देश को उनकी सेवा की जरूरत होगी वो इसके लिए तैयार रहेंगे। रघुराम राजन ने कहा है कि वो गवर्नर बने रहने के लिए तैयार थे, लेकिन गहन चिंतन और सरकार से चर्चा के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। रघुराम राजन ने रिजर्व बैंक के अपने सहकर्मियों को एक लंबा पत्र भी लिखा है। सरकार समर्थक कुछ लोग रघुराम राजन पर ब्याज दरों को तेजी से नीचे लाने की इच्छा नहीं रखने का आरोप लगाते हैं। मिस्र की एक अदालत ने इस्लामी नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुर्सी पर जासूसी के एक मामले में सुनवाई चल रही थी। वो उन लोगों में शामिल हैं जिन पर खुफिया दस्तावेज खाड़ी के देश कतर को सौंपने के आरोप लगे हैं। मुर्सी के वकील ने कहा कि उन्हें जासूसी के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन एक अवैध संगठन का नेतृत्व करने का दोषी माना गया। उनके साथ ही अल जजीरा के दो पत्रकारों को मौत की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद मुर्सी को इससे पहले भी उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और उन्होंने इस सजा की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ग्रीस में प्रवासी संकट पर चर्चा करने गए हैं। सीरिया और इराक से भागे 50,000 से ज़्यादा लोग ग्रीस में अपने भविष्य पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बान की मून ने ग्रीस का आभार जताया है। उन्होंने कहा, देश में आर्थिक मुश्किलों के बावजूद ग्रीस इंसानों का जीवन बचाने में उदार रहा है। ग्रीस इस योग्य है कि उसकी खूब प्रशंसा की जाए, साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बड़े सहयोग पाने के भी काबिल है। ग्रीस को अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं भूमध्य सागर में बड़ी संख्या में मौत के शिकार बने लोगों के लिए दुखी हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के शब्द। बान की मून लेस्बोस भी जा रहे हैं, जहां अब भी हजारों शरणार्थियों का आना जारी है, लेकिन ये लोग सीमाओं के बंद होने के कारण आगे नहीं जा पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मन विदेश मंत्री फ्रांक वॉल्टर स्टाइनमायर ने नेटो को चेतावनी दी है कि वो रूस से तनाव को और न बढ़ाए। स्टाइनमायर ने नेटो की गतिविधियों को युद्ध भड़काने वाला करार दिया है। विदेश मंत्री ने ये बात जर्मन अखबार बिल्ड अम जुनटाग को दी इंटरव्यू में कही है। स्टाइनमायर ने कहा है कि इसी महीने पूर्वी यूरोप में नेटो यानी उत्तर अटलांटिक संगठन सहयोग की गतिविधियां क्षेत्रीय शांति के लिए अनुकूल नहीं रही हैं। उन्होंने नेटो से अपील की है कि वो अपने अभ्यासों की बजाय ज़्यादा बातचीत और सहयोग को अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एथलेटिक्स संघों के अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें रूसी खिलाड़ियों पर लगे डोपिंग के आरोपों के बाद उनके ओलंपिक में हिस्सा लेने पर रोक लगाई गई है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देता हूँ, 1811-7000 और 1811-7001। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, जरा विषय एक बार फिर से समझ लेते हैं। पिछले दो हफ्तों से कैराना चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले का कैराना कस्बा, ये वही कैराना है जहां सदियों से संगीत की सुर लहरियां बिखरती आई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इसी इलाके में अब्दुल करीम खां ने किराना घराने की नींव रखी। रोशन आरा बेगम पंडित भीमसेन जोशी इसी किराना घराना के गायक हैं। इस घराने के कलाकारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन चर्चा इसलिए क्योंकि स्थानीय सांसद हुकुम सिंह ने कुछ दिनों पहले एक सूची जारी की जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ के 346 हिंदू लोगों ने मुसलमानों के डर से इलाका छोड़ दिया और इसकी तुलना कश्मीर के पंडितों के पलायन से की।
मैं तो ये कहता हूँ कराना तो बिल्कुल एक कश्मीर का एक वो पर्याय हो गया जहाँ से वहाँ के पंडितों को भागने के लिए मजबूर किया गया था, इसी प्रकार से कराने से वहाँ के व्यवसायियों को घर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया।
मीडिया चैनल पहुंचे पड़ताल की तो पता चला कि सूची में बहुत गड़बड़ियां हैं। कुछ परिवार तो 10-15 साल पहले ही वहां से जा चुके थे और उनके जाने की वजह भी अलग अलग थी। किसी को रोजगार नहीं मिला तो कुछ अच्छी पढ़ाई के लिए वहां से निकले। सूची में कुछ नाम मृतकों के थे। बाद में हुकुम सिंह ने एक नई सूची जारी की, मुसलमान शब्द वापस ले लिया। इस मुद्दे को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठा लिया और मुद्दा बना लिया। अमित शाह ने कहा,
केरला का पलायन आग खोलने वाला पलायन है। आप चाहते हैं इस प्रकार के पलायन सारे उत्तर प्रदेश में हो? चाहते हो आप? अगर नहीं चाहते हो तो उखाड़ कर फेंक दीजिए इस समाजवादी पार्टी की सरकार को। मित्रों, उखाड़ कर फेंक दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी ने 9 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। सदस्यों का दौरा हुआ, विपक्षी दलों के नेताओं का एक दल बना। कल बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने कैराना तक होने वाली निर्भय यात्रा निकालनी चाहिए, रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी सद्भावना यात्रा निकालनी चाहती थी, वो भी रोक दी गई। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता CP राय और जल्दी शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम। सबसे पहले CP राय साहब, अमित शाह को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी को उखाड़ दो, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं।
जी हाँ, उनका अधिकार है, वो अपना जो भाषण देना चाहे दे। उन्होंने गुजरात में भी तरह तरह के भाषण दिए और उनके ऊपर मुकदमे चले, जेल भी गए। तो हर आदमी का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं, संविधान के कुछ नियम होते हैं। संविधान के आधार पर देश चलता है, लोकतंत्र के मर्यादाओं पर लोकतंत्र चलता है। अब उसको कोई नहीं पालन करना चाहता, उससे अलग हटके चलना चाहता है। लोकतंत्र बना है लोगों के लिए, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जनता का ये शासन है वो जनता के लिए होता है और अलग अलग दल इसलिए बनते हैं कि उनके अपने अपने प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम के आधार पर वो जनता के सामने जाते हैं
जी,
फिर उन्हें सरकार में आने पर इम्प्लीमेंट करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो परिवार है ये उन चीजों को मानता नहीं है, ये शुरू से नहीं मानता, न झंडे को, न संविधान को, न लोकतंत्र को, वो फांसीवाद को मानता है। और फांसीवाद ही उसका सपना है, उसके गुरु गोलवलकर का सपना था, जो लिख गए वही उनकी गीता रामायण, वही उनका संविधान है। तो उसके लिए वो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक लोकतंत्र है और ये संघीय शासन का लोकतंत्र है, व्यवस्था का
जी,
लोकतंत्र
जी। CP राय जी, आपसे तो हमने सवाल पूछ लिया, कार्यक्रम में संगीत सोम शामिल हो गए हैं। संगीत सोम जी हमारे साथ, CP राय भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप वहां पर एक निर्भय यात्रा निकालना चाहते थे जिसे रोक दिया गया। आपने चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर जिनका पलायन हुआ है वापस आ जाएं। वापस कैसे आएंगे जब सूची में ही गड़बड़ियां हैं, आपको खुद नहीं पता कि कितने लोग कब गए और क्यों गए, और उनके जाने की वजह भी हुकुम सिंह खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों के डर के चलते शायद ऐसा नहीं हुआ।
तो ये मेरे पूरे एक बयान में आप बता दीजिए जिसमें मैंने ये कहा है कि ये मुसलमानों के चलते हुआ है। हमने पलायन की बात करी है, मेरे एक बयान में बता दीजिए, किसी टीवी वाले के या किसी कैमरे के या किसी में दिखा दीजिए। हमारा कहना ये जो पलायन किए हैं वो लोग वापसी हो, वो गुंडागर्दी की वजह से हुए हैं, वो मुस्लिम की वजह से हुए हैं, वो किसकी वजह से हुए हैं इससे मेरा मतलब नहीं है। हम लोगों का मतलब इस बात से है कि जो लोग पलायन किए हैं उन लोगों की वापसी होनी चाहिए। और लिस्ट में हमने वो एक यहाँ पेपर
मेरी तरफ से
जी जी
मेरी तरफ से सवाल पूछ लीजिए।
नहीं, आप ही पूछ लीजिए, आप ही पूछ
लीजिए। इनकी 15 साल पहले इनकी सरकार थी, हुकुम सिंह जी खुद मंत्री थे और इन्हीं के लोग मुख्यमंत्री थे। उस वक्त जो पलायन लोगों ने किया था तब ये क्या कर रहे थे, उसके बाद 15 साल तक ये क्या कर रहे थे? हुकुम सिंह जी इतने दिन से वहाँ सांसद है, वहाँ इतने दिन से वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या जिम्मेदारी निभाई? आखिर उन्होंने पलायन अपनी जनता को होने क्यों दिया? अगर वो पलायन हुआ है तो पलायन सिर्फ यहीं पर चर्चा होगी या जो गोधरा से लोग पलायन करके गए उन पर भी चर्चा होगी? जो तमाम किसान पलायन करके जाते हैं उन पर भी कभी चर्चा होगी? कभी किसानों के दर्द की भी ये बात करेंगे, उसके लिए भी कोई यात्रा निकालेंगे? कभी उसके भूख के बारे में भी बात करेंगे? जो गरीब पलायन करके फुटपाथों पर सो रहा और बच्चे चौराहों पर भीख मांग रहे हैं क्या उनके बारे में भी कोई भारतीय जनता पार्टी कभी कोई बात करेगी?
CP राय जी, मैं
हिंदू मुस्लिम का सवाल है
जी।
मैं स्वागत करता हूं संगीत सोम जी का
जी।
जो बहुत बड़े व्यापारी हैं बीफ का, जिसको ये लोग गाय कहते हैं, उसके मीट के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उस व्यापारी होने के नाते
इनसे 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 कहिए सीपी राय जी से कि अनर्गल बात इस तरीके की नहीं करनी चाहिए कि आज तक आपने प्रमाण किया किसी के बारे में आप कुछ भी कह देंगे और उसके बाद इस तरीके की बात करेंगे, ये तो बिल्कुल एकदम इस तरीके की बिना पढ़े लिखे
नहीं, हम पलायन की बात करते हैं, पलायन की ही बात करेंगे।
इन लोगों से इन्हें इनसे पूछना कि आपने कोई प्रमाण दिया आज तक किसी के बारे में कुछ भी कह देंगे और आप उस पर फिर कहेंगे कि इनसे पूछिए
नहीं, लेकिन लेकिन लेकिन
पूरी सरकार आज तक कोई प्रमाण नहीं दे पाई।
लेकिन सीपी राय साहब का मुख्य मुद्दा ये है कि
सीपी राय जी को ये पूछना चाहिए, सोचना चाहिए फिर जिस विषय पे बैठे उस विषय पे बात करनी है।
जी हां, सीपी राय जी
दूसरे विषय पे बात करनी है तो फिर दूसरे विषय पे जाइए।
सीपी राय जी, निवेदन ये है कि हम सिर्फ पलायन के मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं और उसी पर हम फोकस रखेंगे। और दूसरी चीज संगीत सोम जी, कोई बात नहीं, हम विषय पर वापस आते हैं। सीपी राय साहब ने एक मुद्दा जो उठाया, ये कहा कि पलायन तो तमाम चीजों को लेकर होता है, किसानों के पलायन पर चर्चा हो। जी जी,
मैं भी आजमगढ़ से पलायन करके आया, मेरा पूरा परिवार आजमगढ़ से पलायन करके गया है। मेरे घर में 18 कमरे का घर है, ताला बंद है, कोई नहीं रहता।
सीपी राय जी, वो जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब संगीत जी दे रहे हैं। जी
हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो लोग वहां से पलायन किए हैं इन लोगों को भी पता है, जो लिस्ट हमने दी है वो एक वहां के लोकल पेपर अमर उजाला ने छापा भी है कि जो लिस्ट दी गई है संगीत सोम जी की तरफ से, हर आदमी से हमारी बात हुई है और उन लोगों ने सबने कहा है कि हम वहां गुंडागर थी और एक विशेष वर्ग के लोगों ने हमें जिस तरीके से धमकाना शुरू किया, हम वहां से पलायन करके आए हैं।
जी, मैं आप दोनों को यहीं पर रोक रहा हूं। कार्यक्रम श्रोताओं का है और कुछ श्रोता हमारे बहुत देर से टेलीफोन पर इंतजार कर रहे हैं। जी, सबसे पहले एक श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करना चाहता हूं। जी बंदूक, कहां से बोल रहे हैं और क्या बात कहना चाहते हैं?
जम्मू कश्मीर से मैं सर बोल रहा हूं, एक्स सरपंच मोहम्मद शफी जागल पुंछ से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूं मैं।
जी अपनी बात रखिए आप।
सर मेरी रिक्वेस्ट है कि करियाना में जो लोग पलायन हो रहे हैं, हमने रेडियो पर टीवी पर सुना है कि वो लोग अपनी मर्जी से रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, ये हिजरत नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये किसी के डर से पलायन नहीं है, लोग अपनी मर्जी से इधर से उधर जाते हैं रोजी के लिए। हमारे लोग यहाँ से बंबई जाते हैं रोजी के लिए, हमारे लोग दिल्ली में जाते हैं रोजी के लिए, ये कोई पलायन नहीं है।
जी मोहम्मद शफी साहब, जी मोहम्मद
सर, मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देश को बंटवारे की तरफ मत ले जाइए। ये देश जो है महान देश है, ये दुनिया में अव्वल नंबर का देश है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, ये किसी एक आदमी का देश नहीं है।
जी मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद
चाहते हैं, इसलिए ये झूठ और फ्रॉड मत करिए, इसलिए लोगों को जीने की राहत दीजिए, आप समर्थन करिए, आप गरीबी को हटाइए, आप ये जो है ये इलेक्शन का प्रोपगंडा बना के सीट निकालने की कोशिश मत कीजिए।
जी मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद शफी साहब आपकी बात आ गई और ये सीधा सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी पर उठाया है और संगीत साहब हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हैं। संगीत जी, ये भी उसी मुद्दे की बात कह रहे हैं।
ये जम्मू कश्मीर से है तो क्या ये कश्मीर के पंडितों को पलायन भूल गए? क्या पंडित वहां से पूरा पलायन करा है इन्होंने, उसके बारे में कहा अभी एक शब्द भी बोला इन्होंने? क्या ये कैराना को दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं? क्या ये मेरे क्षेत्र में, अभी आप आ जाइए मेरे, आप इन्हें मौके पे बुलाइए। अभी एक महीना पहले एक 25,000 की आबादी का गांव है, एक वर्ग की आबादी का गांव है, वहाँ कुछ व्यापारी रहते हैं और खिवाई गांव है मैं बता देता हूँ, और वहाँ के व्यापारी को रंगदारी मांगी गई एक कुछ गुंडों द्वारा उसी गाँव के, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद हम लोग वहां गए तो पुलिस ने कहा कि 2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। पूछो इनसे कि आज तक गिरफ्तारी हुई क्या, क्योंकि वो एक वर्ग विशेष के लोग थे, तो आज पुलिस 2 महीने तक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई, क्या कारण है इस बात का?
जी जी सीपी राय साहब, ये मामला मतलब हिंदू मुसलमान से ज्यादा आर्थिक जरूरतों के लिए है या फिर क्या आप देख रहे हैं और राजनीति क्यों?
आर्थिक जरूरतों के लिए पूरे देश से लोग इधर उधर जाते हैं। मैंने कहा कि मेरा 18 कमरे का घर है आजमगढ़ में, मेरे परिवार का एक भी आदमी वहां नहीं रहता, मेरे गांव के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए हैं, पढ़ लिख के गए या पढ़ने, बहुत सारे लोग शहर गाँव छोड़ करके शहर में मकान बना लिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और व्यवस्था के लिए कभी कभी गाँव आते हैं। ये पूरे देश में इस तरह का, ये चूंकि पूरे देश में आपको स्वतंत्रता है कहीं भी जाने की, कहीं भी रहने की, कहीं भी बसने की, किसी भी रोजगार में हिस्सा लेने की, तो उसका लाभ लोग उठाते हैं, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि खास तरह से उसको पेंट करने की कोशिश कर रही है, ये बताने की नहीं कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कितने लोग मर गए, कितने लोग 15 साल पहले गए, कितने लोग 5 साल पहले गए। इक्का दुक्का चार परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनकी पर्सनल एनिमिटी किसी के साथ हो सकती है।
तो इस और ये गुंडागर्दी की भी बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं।
कानून में इतनी ताकत है तो कानून के पास जाना चाहिए।
मैं सीपी राय साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि आप 100% ये मानिए कि वो गुंडागर्दी का मामला है, तो गुंडागर्दी ही इस लेवल पे क्यों है कि लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है?
अब आप जैसे ताकतवर लोगों के होते हुए भी कोई वहां गुंडागर्दी कर ले रहा थी तो आप लोगों के लिए शर्म की बात है।
देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार पर भी सवाल है, सरकार के पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर भी सवाल है। जी मैं कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, और आप दोनों हमारे अतिथियों से निवेदन है कि कार्यक्रम में झगड़े नहीं, क्योंकि रेडियो पर जब सारी आवाज़ें एक साथ आती हैं तो सुनाई नहीं देता और कोई भी पक्ष अपनी बात जो है वो पूरी तसल्ली से समझा नहीं पाता और हमारे जो श्रोता हैं वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। जी एक श्रोता को शामिल कर रहा हूं, नाम बताएं।
जी मैं दानी बाबू झा गाँव परसौनी जिला मधुबनी से बोल रहा हूं।
मधुबनी बिहार से बोल रहे हैं जी, बताएं।
जी मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी जितना भी विवादित भी मुद्दा है उसी को क्यों उठाता है? पंडित कश्मीर में पंडित पलायन किया, वो क्या कर लिया? उसकी सरकार हम लोगों ने बनवाया, इतना रोजगार के लिए आदमी भटक रहा है, तो उसको विकास के मुद्दे पर उसको करना चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए कि जो चला गया उसके लिए जूते का हल्ला करना, सिर्फ इलेक्शन मोमेंट बना के बस यही बीजेपी का आपसा मुद्दा ही रह गया है। और दूसरा मतलब जो पलायन कर गया उसके लिए अलग है, ये नहीं जो अगले बार हम क्या विकास करें, क्या हिंदुओं को जरूरत है, जो दूसरे कास्ट में नहीं जाए तो झूठे पूछकर ये सिर्फ हल्ला कर रहा है,
राजनीति कर रहे हैं। एक श्रोता को और शामिल कर रहा हूं मैं, उसके बाद जी नाम बताएं।
सर राजकुमार गुप्ता राजन, मोहनगंज प्रतापगढ़ यूपी।
अच्छा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं जी।
जी सर, सर पहली बार फोन लगा आप लोगों को, नमस्कार।
नमस्कार,
बहुत धन्यवाद सर। सर ये जो भी हो रहा है सर, ये सभी राजनीतिक पार्टियों सर आपसी समझौता होता है सर, इलेक्शन के टाइम पे इन मामलों को उठा करके लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट लेने का एकमात्र तरीका है सर। कभी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी भी नाम पे गुंडेदारी, ये तो सर हर जगह से हो रहा पलायन, कहाँ से नहीं हो रहा सर। दिक्कत ये है सर कि ये जो नेता हमारे सर, जो ये अपने आप को जनसेवा नहीं समझते सर, ये अपने आप सर राजा समझते हैं। पहले सर राजा हुआ करते थे, आजकल ये लोग राजा हैं, ये अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं।
संगीत सोम जी आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं, ये जो हमारे श्रोता हैं इनके 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 दर्द को आप समझ रहे हैं ना?
हाँ मेरे भाई ने, इन्होंने कहा कि प्लान तो हर जगह से हो रहा है गुंडागर्दी की वजह से, और इस वजह से तो मैं अपने भाई से ही पूछ रहा हूँ, तो क्या अगर गुंडागर्दी की वजह से प्लान हो रहा है तो क्या उस पर नहीं खड़ा होना चाहिए?
नहीं, इससे भी
जो हो रहा है उसे होता रहने।
संगीत सोम जी देखिए, दो श्रोताओं ने दो मुद्दे की बात कही और दोनों का मुद्दा एक ही है, चुनावों से पहले देखिए लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो मुजफ्फरनगर आ गया और अब ये कैराना आ गया।
इसका मतलब आप चुनाव से पहले मत लीजिए, और चुनाव में अभी बहुत समय है और चुनाव पे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, चुनाव पे इस सब चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो फिर अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का कैराना का मुद्दा है, अगर समाजवादी पार्टी को हटाना चाहिए, तो अगर ये चुनावी एजेंडा नहीं है तो फिर क्या है?
मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं लोगों की हत्या हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, उनसे पैसा मांगा जा रहा है और घर बना रहा है, आपके टीवी चैनलों पे कुछ लोगों ने बोला है कि हम घर बनाते हैं, तो वहां लोग आके कहते बना लीजिए, इस घर में रहना तो हमें ही है, तो क्या यही लोकतंत्र रह गया है? क्या इसी तरीके से होगा?
तो मामला जो है ना,
हिंदुस्तान सबका है, ये सबका हिंदुस्तान है, सबको भाईचारे से रहने का अधिकार है, तो कैसे कोई किसी को जबरदस्ती वहां से निकालने की कोशिश?
मामला पुलिस और प्रशासन का भी है, सीधे
पुलिस और प्रशासन ने क्या किया?
यही सवाल सीपी राय साहब से पूछ रहा हूं।
प्रशासन ने क्या किया फिर?
सीपी राय साहब से यही सवाल पूछ रहा हूं। देखिए इसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो जनता त्रस्त है और उत्तर प्रदेश वैसे भी इस मामले में बदनाम रहा है।
जी मैं सारी बातें सुन लिया। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें बहुत गरीब लोग हैं, बड़े कमजोर लोग हैं, लाचार लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, तमाम करोड़ों लोग व्यापारी हैं, करोड़ों लोग छात्र हैं, करोड़ों औरतें रोज निकलती हैं काम करने के लिए। क्या एनआरसी उत्तर प्रदेश में सचमुच है? क्या सचमुच यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया? क्या बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया?
तो फिर वहाँ के महिलाओं ने, तो फिर कैराना के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि डर के चलते छोड़ रहे हैं? क्यों फिर?
अगर कोई इंडिविजुअल केस है तो वो उनकी कमजोरी है, उनके नेतृत्व की, वहाँ के लोगों की कमजोरी है, इन्होंने पुलिस के पास उस मुद्दे को नहीं पहुँचाया। अन्यथा किसी भी क्रिमिनल के लिए अभी भी पुलिस और प्रशासन बहुत सख्त है, ऐसा संभव ही नहीं कि कोई क्रिमिनल किसी को दबाने और धमकाने की कोशिश करे, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये कतई संभव ही नहीं देश देश के अंदर।
सीपी राय जी, संगीत सोम जी,
जहाँ मुख्यमंत्री कहते कि जो हो रहा होने दे,
संगीत सोम जी कुछ, सीपी राय जी, संगीत सोम जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूँ, संगीत सोम जी एक सवाल पूछना चाहते थे आपसे, और कृपया आप दोनों भिड़े नहीं।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भिड़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन सीपी राय साहब से ये पूछिए कि अगर ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं हो रही है तो क्या हुआ मथुरा में? एसपी की हत्या कर दी गई, एसओपी हत्या कर दी गई, क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? कहाँ थी इंटेलिजेंस के जब तीन साल से जमीन कब्जाई जा रही थी? रामदर्श यादव जैसे 250 एकड़ जमीन आके कब्जा लेते हैं, कहाँ गई चली गई?
जी जी, आपकी बात खत्म हो गई। सीपी राय साहब,
मैं जवाब देता हूँ
जी।
वो मथुरा का मामला हमने खुद माना है, हमने स्वीकार किया है कि वो प्रशासनिक चूक हुई है, उसमें प्रशासन ने गलत सूचना दी, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही, हमने एक न्यायिक आयोग में बैठा दिया, वो बड़ी चूक थी, लेकिन वहां पर केवल दो पुलिस के लोग भी मारे गए, जनता के लोग भी मारे गए, और आज वो जगह खाली हो गई। हमारे लिए वो घटना बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है, हम स्वीकार करते हैं कि वहां पर प्रशासनिक चूक हुई है।
चलिए, आपने माना कि वहां पर चूक हुई है, मैं आपको रोक रहा हूं,
उसको ढकना नहीं चाहते
जी,
आपने घटना को ढकना नहीं चाहते, जो सत्य है हम सत्य बोलना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बाय एंड लार्ज, उत्तर प्रदेश एक शांत प्रदेश है, तरक्की शुदा प्रदेश है, बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, और 22 करोड़ जनता यहाँ खुशहाल है।
मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ सर, मैं धर्मराज सिंह तोमर बोल रहा हूँ, जिला हरदोई यूपी से।
धर्मराज सिंह तोमर आप बोल रहे हैं हरदोई से जी, स्वागत है, आप अपनी बात कहें।
हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये वोट बैंक की राजनीति नहीं खत्म होगी, तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी। एक वर्ग विशेष का आदमी अपने जो है वोट बैंक के चक्कर में पड़ करके इसी प्रकार से सब ये होता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी आए।
वोट बैंक की राजनीति है, एक और श्रोता को शामिल कर रहा हूँ मैं, नाम बताएं।
जी सर, हमारा नाम मनोज कुमार दुबे है, बहराइच उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
आज देखिए उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है और ज्यादातर फोन कॉल हमारे पास उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। हाँ मनोज
जी, मैं बताना चाहते जो कह रहा है उसको सीबीआई जांच क्यों नहीं होती?
सीबीआई जांच क्यों नहीं होती जी? मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत जी, हमारे जो पहले श्रोता थे, उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और वोट बैंक की राजनीति न सिर्फ बीजेपी कर रही है, बीएसपी कर रही है, और समाजवादी पार्टी कर रही है, सारे दल वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं? ये आम जनता का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आज हालात हैं, उन हालातों में पब्लिक कितनी पिछी हुई है, कितनी त्रस्त है, कितनी पलायन कर रही है, आप क्यों नहीं इस बात पर जाते कि जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के अधिकतर लोगों से, जो लिस्ट मैंने प्रेस में उस दिन दी थी, लोगों से मीडिया वालों ने बात करी है, मैंने फोन नंबर सहित दी थी, उनमें से 100% लोगों ने कहा कि हम पलायन करें, वहां हमें दबाया जाता था, हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती थी, हमारे साथ ये वो, उन्होंने सब बताया, ऐसी बातें उन्होंने बताई है कि जो बताने लायक नहीं है, और वहां से हम पलायन इसी वजह से करें, सरकार क्यों नहीं मानती चीज को? और हम सरकार से यही तो कह रहे हैं कि आगे से वह सख्ताई करके ऐसी व्यवस्था करी जाए कि कोई लोग पलायन ना करे, जो लोग पलायन कर गए हैं ऐसी व्यवस्था करी जाए कि उन्हें लगे कि कैराना सुरक्षित है, और उन्हें सुरक्षा के देकर कैराना में लाया जाए।
जी संगीत सोम जी, संगीत सोम जी, इसी चीज की जवाब लेते हैं सीपी राय साहब, एक सुरक्षित माहौल की ही तो बात हो रही है
जी। मैं आश्वस्त करता हूँ, और आपका बहुत बड़ा ये है, इसके माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ, जिस किसी को कोई भी शिकायत है मेरे मुख्यमंत्री को सीधे उसकी सूचना दीजिए। मैं ये गारंटी करता हूँ उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को अपनी पार्टी की तरफ से, किसी को पलायन करने के लिए मजबूरी नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा भी। अगर कोई ऐसा करता है उसके खिलाफ वही सख्त कार्रवाई होगी, तो भारत के कानून के अंतर्गत ऐसे आदमी के खिलाफ होनी चाहिए, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और मैं संगीत सोम साहब से भी चाहता हूँ कि वो ऐसे मामलों पर लिखित में शिकायत, वो खुद विधायक है, कृपया मुख्यमंत्री जी को ऐसी शिकायतें खुद दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाई करेंगे
जी। आपने आश्वासन दे दिया।
सवाल पूछना चाहता हूँ, सीपी राय साहब से एक सवाल
पूछ लीजिए।
सीपी राय साहब, आप खुद लिख लीजिए, मैं एक मामले पे खुद जाके मुझे वहां धरने पे बैठना पड़ा था, उसका मुकदमा भी नहीं लिखा गया था। अभी थाना सरूरपुर जिला मेरठ में 2 महीने पहले एक व्यापारी की गोली मार के हत्या उसकी दुकान पे की गई, एक वर्ग विशेष के लोगों ने ही की, मुकदमा नहीं हुआ था, और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या यही प्रशासन है कि मर्डर करने वालों को
वर्ग विशेष
दो
जी सीपी राय साहब,
वर्ग विशेष शब्द का आप लोगों को विशेष प्रेम है, मैं कह रहा हूँ क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, उसका कोई वर्ग विशेष नहीं होता है, वो क्रिमिनल किसी जात का और किसी भी धर्म का हो और क्रिमिनल के साथ एक ही तरह से निपटा जाएगा जैसे क्रिमिनल से निपटा जाता है।
आप आश्वासन दे दिया उन्होंने, उन्होंने देखिए देश
आपको अधिकार
मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ,
आपको अधिकार है मंत्री को लिखने का,
मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ संगीत सोन साहब, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। इस कार्यक्रम में सीपी राय साहब ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इतना बड़ा आश्वासन और करोड़ों लोग इस समय मतलब देश की जनता सुन रही है। कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करता हूं, एक श्रोता को शामिल कर रहा हूं, नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं।
हाँ हेलो
जी, हाँ
हरिशंकर मौर्य जगदीशपुर तेजगढ़ जौनपुर यूपी से बोल रहे
हैं। जौनपुर से बोल रहे हैं हरिशंकर जी।
जी
जी अपनी बात रखिए आप।
वास्तव में जितने भी दल है ना सब वही वोट की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं अगर प्लान है कुछ तो है, लेकिन तो उसमें सब पार्टियां मिलकर काम करनी चाहिए ना। लेकिन कहीं अगर मुस्लिम बात हो गई तो पूरी पार्टियां एक, बीजेपी अलग, हिंदू हुआ तो बीजेपी अलग और सब पार्टियां अलग, ये सब राजनीति ही तो है,
राजनीति ही तो है। एक और श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, नाम बताएं, नाम बताएं।
हेलो
जी, हाँ नाम बताएं भैया।
बागीश चौहान बाबू।
बागीश चौहान बाबू कहाँ से बोल रहे हैं?
सीपी राय साहब के गांव से।
अच्छा सीपी राय साहब आपको सुन रहे हैं जी, आप अपने अपनी राय रखें आप।
सर है सर कि जो ये लोग पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या पूरे समाजवादी पार्टी में जितने लोग रहेंगे उन्हीं की सुरक्षा होगी या और लोगों की भी सुरक्षा हो सकती है?
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, समय हमारे पास कम है, आखिरी कमेंट लूंगा। सीपी राय साहब आप ही की जगह के रहने वाले ये व्यक्ति थे जिनका फोन आया, क्या पार्टी विशेष के लोगों को ही सुरक्षा मिलेगी? सवाल इनका बहुत सीधा है और मेरे ख्याल से इस सवाल से संगीत सोम साहब भी सहमत होंगे।
अगर कहीं कोई ऐसा एहसास है तो बहुत गलत है। सुरक्षा हर एक की गारंटी है, सुरक्षा हर एक को चाहिए, सुरक्षा हर एक का अधिकार है। ये लोकतंत्र देश और प्रदेश सबका है, संविधान सबका है, सबकी कुर्बानी से यह देश बना है और ये सभी के लिए है। अगर कहीं भी कोई ऐसा एहसास है तो मुझे उसका अफसोस है। आप बताइए कहाँ ऐसी दिक्कत है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और हर व्यक्ति को अपने को सुरक्षित समझना चाहिए।
आखिरी सवाल, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ संगीत सोम साहब, ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, आखिरी टिप्पणी क्योंकि समय बहुत कम है, मई इससे मकसद क्या हासिल होगा? इससे तो धार्मिक भावनाएं और भड़केंगी।
केवल मुझे केवल एक चीज बता दीजिए, पूरी यात्रा में निर्भय यात्रा के रूप से इस यात्रा को लिया गया और उस यात्रा में आपने देखा होगा मेरी यात्रा में मुस्लिम लोग भी थे। हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ आई पहले तो मुझे ये समाजवादी पार्टी वाले ये बता दें कि संगीत सोम ने यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात की।
बात ये नहीं है, बात ये नहीं कि यात्रा निकलेगी, यात्रा निकलेगी तो कुछ ना कुछ। जी
मेरी सुन लीजिए, और लोकतंत्र में, लोकतंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है। मैं भी इसी उत्तर प्रदेश का एक वासी हूँ, अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का हर आदमी को अधिकार है।
लेकिन अगर सब लोग चाहे देखिए,
मुझे जहाँ प्रशासन ने रोका मैंने कानून का पालन करते हुए अपनी यात्रा वहीं रद्द कर दी।
लेकिन आपने चेतावनी भी दे दी कि 15 दिन बाद अगर ऐसा नहीं हुआ, वापस नहीं आए तो फिर से आप वही काम करेंगे।
मैंने ये चेतावनी दी है कि 15 दिन में ये ऐसा माहौल सरकार वहां लोगों को दे कि लोग जो वापस गए हैं वो आने चाहिए और जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें महसूस होना
चाहिए। बस आखिरी टिप्पणी, जी जी राय साहब आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ, संगीत साहब की बात खत्म।
कश्मीर के लोगों को कब तक वापस ला रहे हैं लोग?
कश्मीर में तो भाई पीडीपी सरकार, पीडीपी सरकार जो है वो इस
इस पे
काम कर रही है, इस पे काम कर रही है, काम कर रही है उसमें, तो ये तो
कब तक लेके आते हैं वो अलग इशू है, उस पर मैं नहीं।
लेकिन बेहतर ये कि सुरक्षित माहौल बने सीपी राय साहब समाजवादी पार्टी की ओर से और संगीत सोम साहब, ये बहस बहुत लंबी है, लंबी चलेगी, इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है। इससे पहले कि मैं इससे पहले कि कार्यक्रम का समापन करूं, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं। और संगीत सोम जी और सीपी राय साहब, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।
बीबीसी समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि वो इसी साल सितंबर में कार्यकाल खत्म होने के बाद पद से हट जाएंगे। रघुराम राजन ने कहा है कि 4 सितंबर 2016 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अकादमिक क्षेत्र में लौट जाएंगे। मिस्र की एक अदालत ने इस्लामी नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ग्रीस में प्रवासी संकट पर चर्चा करने गए हैं। सीरिया और इराक से भागे 50,000 से ज्यादा लोग ग्रीस में अपने भविष्य पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जर्मन विदेश मंत्री फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर ने नाटो को चेतावनी दी है कि वो रूस से तनाव को और न बढ़ाए। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा बीबीसी इंडिया बोल में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में खबरों के साथ यानी कि घटना चक्र कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होनी तय है। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।